लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के संत दामासुस प्रांगण में उपस्थित सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
करी फ्रतेली सोरेले बोंजोर्नो। इन क्वेस्टा पेनुल्टिमा कैटेकेसी सुला प्रेगेरा पार्लियामो देला पर्सेवेरांसा नेल प्रेगारे।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। प्रार्थना के इस अंतिम धर्म शिक्षा माला में हम प्रार्थना में दृढ़ता पर चिंतन करेंगे। यह हमारे लिए एक निमंत्रण है जो वास्तव में हमारे लिए धर्म ग्रंथ से आता है। रूस के तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक यात्रा संत पौलुस द्वारा थिसलनीकियों के नाम पहले पत्र से शुरू होती है। निरंतर प्रार्थना कीजिए और सभी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रेरित के वचन मानव को प्रभावित करते हैं और वह अपने में यह आश्चर्य करता है कि वह कैसे बिना बाधित हुए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि हम अपने जीवन को बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ पाते हैं जो हमारी एकाग्रचिता को सदैव असंभव बनाती है। मानव इस सवाल से अपनी खोज शुरू करता है जो उसे हृदय की प्रार्थना में पहुंचने हेतु मदद करता है। विश्वास में यह हमें इस मनोभाव को दोहराने हेतु प्रेरित करता है, यीशु ख्रिस्त ईश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया कीजिए। संत पापा ने विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को इस प्रार्थना को बार बार दोहरवाया।
Una preghiera che poco a poco si adatta al ritmo del respiro e si estende a tutta la giornata.
यह एक छोटी प्रार्थना है जो धीरे धीरे हमारे सांसों के साथ पूरे दिन में प्रसारित होती है। वास्तव में हमारी सांसें नहीं रुकती हैं, यहाँ तक कि उस समय भी जब हम सोते हैं। उसी भांति प्रार्थना हमारे जीवन की सांसें हैं। संत पापा ने कहा कि कैसे तब हम अपनी प्रार्थनामय स्थिति में दृढ़ बने रह सकते हैं। कलिसियाई धर्म शिक्षा आध्यात्मिकता के इतिहास से हमारे लिए सुंदर उदाहरणों को प्रस्तुत करती है जो प्रार्थना की दृढ़ता में बने रहने की आवश्यकता को दिखलाती है, जो हमारी ख्रिस्तीयता का सार है। मठवासी इवाग्रियस पोंटिकस उपयुक्त बात पर बल देते हुए कहते हैं, हमें कार्य करने की आज्ञा नहीं दी गई है, जागते रहने और उपवास करने को नहीं कहा गया है, लेकिन हमें निरंतर प्रार्थना करने को कहा गया है। इस भांति हम ख्रिस्तीय जीवन में एक उत्साह को पाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है। संत पापा ने कहा,
C'è dunque un ardore nella vita cristiana che non deve mai venire meno. È un po' come quel fuoco sacro che si custodiva nei tempi antichi, che ardeva senza interruzione e che i sacerdoti avevano il compito di tenere alimentato.
यह प्राचीन मंदिरों में रखे गए उस अग्नि के समान है जो बिना कुछ किए धधक उठती है, जिसे प्रज्वलित करने का कार्य पुरोहितों का था। हम सबों में वह पवित्र आग है जो निरंतर जलती रहती है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता है। यह सहज नहीं है, लेकिन इसे ऐसा ही होना है। संत योहन क्रिसोस्तम, जो पुरोहित के रूप में अपने असल जीवन में सजग था, अपने प्रवचन में कहा, लोगों के बीच या अकेले में चहल कदमी करते समय या अपनी दुकान में खरीद बिक्री करते समय, यहाँ तक कि खाना बनाते समय भी हम उत्साहजनक प्रार्थना कर सकते हैं। अतः प्रार्थना अपने में एक संगीत की भांति है जिसे हम अपने जीवन में माधुर्य अंकित करते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के विपरीत नहीं है। यह हमारे छोटे उत्तरदायित्वों और नियुक्तियों को खारिज नहीं करता, बल्कि वह स्थल बनता है जहां हमारे हर कार्य की उत्पत्ति, उसमें शांति होती और वे अपने में अर्थपूर्ण होते हैं। संत पापा ने कहा,
Certo, mettere in pratica questi principi non è facile.
निश्चय ही इन सारे सिद्धांतों को कार्यान्वित करना अपने में सहज नहीं है। एक माता और एक पिता जो अपने में हजारों कार्यों में व्यस्त हैं, अपने लिए निरंतर प्रार्थना करने हेतु स्थान और समय निकालने में सहज अनुभव नहीं करते हैं। वहीं बच्चे, कार्य, पारिवारिक जीवन, बुजुर्ग माता पिता, हमें अपने में ऐसा अनुभव होता है कि ये सारी चीजें अपने में कभी खत्म नहीं होंगी। अतः हमारे लिए यह उचित है कि हम ईश्वर हमारे पिता के बारे में सोचें, जो पूरे विश्व की देख रेख करते हैं, सदैव हमें याद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन्हें याद करने की आवश्यकता है। हम इस बात की भी याद कर सकते हैं कि ख्रिस्तीय मठवासीवाद को सदैव एक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, इसलिए नहीं कि यह अपने लिए और दूसरों के लिए एक नैतिक कार्य को प्रस्तुत करता है, वरन एक प्रकार के आंतरिक संतुलन के लिए जिसे यह अपने में धारण करता है। मानव का अपने लिए एक अमूर्त चाह का विकास करना उसे सच्चाई से दूर कर देता है। कार्य हमें सच्चाई से जुड़े रहने में मदद करता है। प्रार्थना में शामिल भिक्षु के हाथ फावड़े और कुदाल चलाने वाले के घट्ठा को सहन करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में यीशु का मार्था को यह कहना कि केवल एक ही बात अर्थात ईश्वर के वचनों को सुनना जरूरी है, अपने इस कथन के द्वारा वे उनकी सेवा के कार्यों को खारिज नहीं करते हैं। संत पापा ने कहा,
Nell'essere umano tutto è binario. Il nostro corpo è simmetrico.
मानव का जीवन द्विचर है। हम अपने शरीर में संतुलन को पाते हैं। हमारी दो बाहें, दो आंखें, दो हाथ इत्यादि हैं। उसी भांति कार्य और प्रार्थना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रार्थना जो सारी चीजों का प्राण वायु है, सजीव कार्यों के पृष्ठभूमि में रहती है जो बहुधा अपने में दिखाई नहीं देती है। हम मानव अपने कार्यों में इतने मशगूल हैं कि हमें प्रार्थना करने हेतु समय नहीं मिलता है। वही प्रार्थना जो जीवन से तटस्थ है अपने में स्वस्थ नहीं है। प्रार्थना जो अपने को ठोस जीवन से पृथक कर लेता है आध्यात्मवाद या कर्म कांड बनकर रह जाता है। हम यीशु ख्रिस्त की याद करें, तबोर प्रार्थना तबोर पर्वत पर अपनी महिमा प्रकट करने के बाद वे उसी स्थिति पर बने नहीं रहे, अपितु वे पर्वत से उतरकर अपने दैनिक जीवन में आए, क्योंकि उस अनुभव को शिष्यों के हृदय में विश्वास रूपी ज्योति और शक्ति के रूप में बनी रहनी थी। इस तरह ईश्वर के साथ व्यतीत हमारा समय हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करता है, जो व्यवहारिकता में सहायक होता और विश्वास अवरोध के बिना प्रार्थना में बदल जाती है। विश्वास, जीवन और प्रार्थना के इस चक्र में हम अपने ख्रिस्तीय जीवन की ज्योति को बनाए रखते हैं, जिसकी चाह ईश्वर हम सबों से करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अंत में पुनः उस छोटी प्रार्थना को दोहराने का आग्रह किया, प्रभु येसु ईश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया कर। इस प्रार्थना को निरंतर दोहराना हमें यीशु से संयुक्त रहने में मदद करेगा। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह में विश्वासियों को प्रार्थना पर धर्म शिक्षा दी। संत पापा ने प्रार्थना की तुलना सांस से की। जिस तरह जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह एक ख्रिस्तीय के लिए प्रार्थना जरूरी है। इसी के मद्देनजर संत पापा ने ट्वीट कर सभी को प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, प्रार्थना जीवन की सांस है और हम सभी इसे जीने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, ताकि यह एक अबाधित प्रार्थना बन जाए। यह सांस की तरह ख्रिस्तीय अस्तित्व का आधार है, इससे हम अलग नहीं रह सकते। और संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतीसिया के प्रकाशन के 5 साल बाद लोकधर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठीय विभाग द्वारा आयोजित फोरम को संबोधित किया। संत पापा ने महामारी के कारण व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद पहल करने के लिए विभाग को धन्यवाद दिया। संत पापा ने फोरम में उपस्थित 60 से अधिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के पारिवारिक कार्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जो इस बैठक में जुड़े हुए हैं। संत पापा ने वीडियो संदेश में कहा, अमोरिस लेतीत्सिया परिवार वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलों के परिदृश्य में फोरम परम धर्मपीठ धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों आंदोलनों और पारिवारिक संघों के बीच संवाद के एक आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र आत्मा इसे कलीसिया पुरोहितों और लोकधर्मियों के लिए एक साथ आने परिवारों की ठोस जरूरतों को सुनने और कलीसिया की घोषणा को नवीनीकृत करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को शुरू करने में एक दूसरे की मदद करने के लिए एक उपयोगी क्षण बनाता है। संत पापा ने कहा, आप खुद से जो सवाल पूछते हैं, अमोरिस लेतीत्सिया के उपयोग में हम कहाँ खड़े हैं का उद्देश्य नवीन सुसमाचार प्रचार के दृष्टिकोण से शैली और पारिवारिक प्रेरिताई देखभाल के उद्देश्यों पर एक उपयोगी कलीसियाई विवेक को प्रोत्साहित करता है। अमोरिस लेतीत्सिया विवाह और परिवार पर धर्म सभा के एक गहन मनन चिंतन का फल है, अतः मिशनरी कार्यान्वयन और हृदय परिवर्तन में धैर्य पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। यह फोरम धर्म सभा पथ की निरंतरता के लिए बनाई गई है, जिसे स्थानीय कलीसियाओं में लागू करने में सक्षम होना चाहिए और जिसके लिए सहयोग, जिम्मेदारी साझा करने, विवेक की क्षमता और परिवारों के करीब रहने की इच्छा की आवश्यकता होती है। संत पापा ने कहा, महामारी के इस कठिन दौर से गुजरते परिवारों की कठिनाइयों को सुनना और उनकी प्रेरितिक देखभाल का उत्तरदायित्व स्थानीय कलीसिया का है। लोगों की वास्तविक समस्याओं के संबंध के बिना केवल सैद्धांतिक संदेश को अलग रखना आवश्यक है। साथ ही इस विचार को कि सुसमाचार प्रचार एक प्रशिक्षित वर्ग के लिए ही आरक्षित है, सभी बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति सुसमाचार के वाहक हैं। युवाओं के लिए ईश्वर का प्यार लाना है जो भविष्य में परिवारों का निर्माण करेंगे। हमें स्वयं परिवारों की मदद, उनके जीवन और सहभागिता के ठोस अनुभव की आवश्यकता है। हमें अन्य परिवारों के साथ चलने के लिए, कमजोर लोगों की मदद करने के लिए और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए पुरोहितों के साथ साथ दंपतियों की भी आवश्यकता है। मसीह विवाह के संस्कार में मौजूद है और जीवन की हर परिस्थिति में सभी को कोमलता, धैर्य और आशा देते हैं। और एक बयान में परम धर्मपीठ ने बुधवार को प्रकाशित मनीवाल रिपोर्ट के बाद आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पूर्ण अनुपालन की दिशा में काम करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। परम धर्मपीठ ने बुधवार को विशेषज्ञों की समिति की मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों और आतंकवाद के वित्त पोषण मनीवाल के मूल्यांकन पर प्रकाशित एक नई रिपोर्ट का स्वागत किया। वाटिकन प्रेस ऑफिस के बयान अनुसार परम धर्मपीठ आज प्रकाशित मनीवाल रिपोर्ट और पहले से शुरू किए गए मार्ग पर जारी रहने के निमंत्रण का स्वागत करता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी अधिकारियों द्वारा अपनाए गए उपायों की प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए परम धर्मपीठ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पूर्ण अनुपालन की दिशा में काम करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। और रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर ध्यान से विचार करता है। मणिवाल ने परम धर्म पीठ द्वारा की गई प्रगति को भी मान्यता दी है और इसे आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उधर म्यांमार में सेना द्वारा एक और कैथोलिक गिरजाघर पर गोलाबारी की गई। 6 जून को मरिया शांति की महारानी गिरजाघर पर हुए हमले में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है, क्योंकि अंदर शरण लिए हुए पल्ली वासियों ने हमले को भांप लिया था और अपने रिश्तेदारों के पास चले गए या जंगल में भाग गए। काया राज्य में 2 सप्ताह में सैन्य हमले में मरिया शांति की महारानी गिरजाघर कथित तौर पर 3रा गिरजाघर है। 23 मई की रात को पवित्र हृदय गिरजाघर पर तोपखाने से गोलीबारी की गई थी, जिसमें 4 कैथोलिक मारे गए और कम से कम 8 घायल हो गए थे। लड़ाई के प्रमुख क्षेत्रों में से एक डेमोसो शहर में 26 मई की रात को संत जोसेफ गिरजाघर में सैन्य तोपखाने से गोलीबारी की गई। हालांकि 6 जून को काया के जेरोबलो मरियम गिरजाघर पर एक अन्य सैन्य हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। उधर वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए गोपनीय फोन की निगरानी करके एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जंगी कार्रवाई 16 देशों में सैकड़ों गिरफ्तारियां और नशीली दवाइयों और हथियारों की बरामदगी हुई है। यूरोप के पुलिस संगठन यूरोपोल के साथ साथ यूएस संघीय जांच कार्यालय, स्वीडन और नीदरलैंड के अधिकारियों ने हाल ही की सबसे व्यापक वैश्विक अपराध लड़ाई अभियानों में से एक की पुष्टि की। कथित तौर पर 100 देशों में लगभग 300 अपराध नेटवर्क पर नजर रखी गई थी। पुलिस 8 टन से अधिक कोकीन, 22 टन भांग और 4 टन सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।